दूसरा राजा अध्याय 7 पद 1 और 2। तब एलिशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है कि कल इसी समय शोमरोन के फाटक में सवा भर मैदा, एक शेकेल और 2 सवा जव भी एक शेकेल में बिकेगा। तब उस सरदार प्रधानमंत्री ने जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोके खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी। कई बार ऐसा होता है कि हम समझने का प्रयास करते हैं कि परमेश्वर कैसे कार्य करता है। परमेश्वर ने हमें महान प्रतिज्ञा दी है, परंतु मैं चाहता हूं कि देखूं वो उसको पूरा कैसे करेगा। मैं उसका अनुमान अपने मन में लगाता हूं। बाइबल कहती है फिलिपियों 4:19 में, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हरेक घटी को पूरी करेगा। ओह, ये तो बड़ी उत्तम प्रतिज्ञा है, परंतु वो हमारी जरूरतें कैसे पूरी करेगा? मुझे इस सप्ताह कई जगह पैसा देना है, वो कैसे करेगा कि मैं पैसे दे पाऊं? मैं उसकी विधियों को समझने का प्रयास करता हूं। मैं सदा चाहता हूं कि मैं जानूं कि वो मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर कैसे देगा, और जब मैं अनुमान लगाता हूं कि परमेश्वर इस तरह मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, तो मेरी प्रार्थनाएं आदेश प्रार्थनाएं होती है, ना कि सीधी प्रार्थना। मेरी प्रार्थनाएं समाधान से पूर्ण हो जाती है और मैं परमेश्वर को राय देने लगता हूं। ओ प्रभु, मैंने समाधान सोच लिया है, यदि तू ये और ये करे तो प्रभु सब ठीक हो जाएगा। परंतु परमेश्वर सदा मेरा निर्देश नहीं सुनता, और यही पर हमें समस्या दिखाई देती है, क्योंकि यदि वो हमारा निर्देश पूरा नहीं करता तो हम उससे अप्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, मैं नहीं सोचता कि वो मेरी सहायता करेगा, मेरी समझ में तो वो मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे निर्देश के अनुसार नहीं करता। मैंने पूरी योजना बना ली है जिसके अनुसार परमेश्वर काम करेगा। सीधे सीधे प्रार्थना करने की अपेक्षा मैं परमेश्वर को कार्य विधि समझाता हूं। इस मनुष्य ने भी अपनी समझ का सहारा लिया और तर्क किया कि ये कैसे हो सकता है जब एक गधे का सिर चांदी के 30 टुकड़ों में बिक रहा था तो दूसरे दिन मैदा और जौ इतना सस्ता कैसे बिकेगा? क्या परमेश्वर स्वर्ग की खिड़कियां खोलकर चारों ओर मैदा गिराएगा? और इस तरह उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा का ठट्टा किया। ये अविश्वास की स्थिति है। उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा का ठट्टा किया क्योंकि वे अपनी बुद्धि में समझ नहीं सका कि परमेश्वर अपना कहा कैसे पूरा करेगा। मैं प्रायः समझ नहीं पाता कि परमेश्वर कैसे काम करेगा। ये तब होता है जब मैं घबरा जाता हूं, जब तक मैं ये समझ पाता हूं कि परमेश्वर कैसे काम करेगा। मैं अधिकतर संभल चुका होता हूं, परंतु जब वे लॉटरी का नंबर निकालते हैं और मेरा नंबर नहीं निकलता, उसने मुझे निराश किया है। तब मैं मन में कहता हूं कि मैंने तो पहले ही जान लिया था उसे मेरा नंबर निकालना था, परंतु उसे वो नंबर दिखा नहीं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर के पास ऐसे स्रोत हैं जो आप नहीं जानते। परमेश्वर कहता है यशाया 55:8-9 पद, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी एक सी है। रोमियो 11:33 पद, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। ये मेरा काम नहीं है कि मैं खोज करूं या जानूं या अनुमान लगाऊं कि परमेश्वर अपना कार्य कैसे करेगा। मुझे केवल विश्वास करना है कि परमेश्वर करेगा, क्योंकि उसने कहा है वो करेगा। यदि परमेश्वर कहता है कि वो करेगा तो वो अवश्य करेगा, परंतु इस मनुष्य ने अविश्वास से परमेश्वर की प्रतिज्ञा का ठट्ठा किया। पद दो में आगे लिखा है, उसने कहा, सुन, तू ये अपनी आंखों में से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। परमेश्वर तो कार्य करेगा, परंतु अविश्वासी उसके भागी ना हो पाएंगे। अविश्वासी की यही विडंबना है, वो आपको उसके लाभ से वंचित रखेगा। आपके लिए परमेश्वर ने उद्धार का महान कार्य किया है। अविश्वास आपको जीवन में परमेश्वर के कार्यों से जुदा रखेगा। आप परमेश्वर के कार्यों को देखोगे, परंतु उसका लाभ नहीं उठा पाओगे। आप देखोगे कि परमेश्वर ने जो भी प्रतिज्ञा की उसे पूरा किया, परंतु आप उसके भागी न होने पाओगे, क्योंकि आपने विश्वास नहीं किया। ध्यान देने की बात तो यह है कि अविश्वास आपको परमेश्वर की आशीषों से कैसे चुरा लेता है। तू आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने न पाएगा। उस रात समरिया के दरवाजे के बाहर या समरिया के दीवार के बाहर ऐसा हुआ। अध्याय 7 पद 3। और चार कौड़ी फाटक के बाहर थे, भोजन के लिए कूड़े पर निर्भर। उन दिनों में कोढ़ एक घृणित रोग था। कोड़ियों को समाज से बाहर कर दिया जाता था और उन्हें समाज से अलग रहने के लिए मजबूर किया जाता था। जब लोग उनके नजदीक पहुंचते थे तो उन्हें चिल्लाना पड़ता था, अशुद्ध अशुद्ध, ताकि लोग ज्यादा नजदीक ना पहुंचे। ये लोग शहर की दीवार के बाहर जहां लोग कूड़ा डाला करते थे वहां रहा करते थे, और वे लोग कूड़े में से खाने के लिए कुछ न कुछ ढूंढते थे। परंतु समरिया में भीषण अकाल होने के कारण वे कूड़ा भी फेंकने की अपेक्षा उसे बेचते थे। अब क्योंकि शहर के बाहर कुछ भी नहीं फेंका जा रहा था, इसलिए ये कोड़ी बहुत भूखे थे। आप अनुमान लगा सकते हैं, जहां बच्चों को मारकर खाया जा रहा हो तो वहां पर क्या कूड़ा निकलेगा, और क्या ही कोई कूड़े में से खाने के लिए पाएगा। अध्याय 7 पद 3 में आगे लिखा है, वे भूखे मर रहे थे। वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहां बैठे बैठे मर जाएं? ये अच्छा सवाल है, मरने तक यहां क्यों बैठे रहे? दूसरे शब्दों में, यदि मैं कुछ न करूं तो मैं मर जाऊंगा, यूं ही बैठे रहकर मैं मर जाऊंगा, तो क्यों बैठे रहे कि हम मर जाएं? समरिया में भी जाए तो व्यर्थ है, क्योंकि समरिया वाले भी भूखे मर रहे हैं। वे हमें भोजन नहीं दे सकते। चलो हम आराम की सेना के पंडाव की ओर चलें। यदि वे हमें मार डाले तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि यदि हम कुछ नहीं खाएंगे तो भी हम मर जाएंगे। परंतु हो सकता है वे हम पर दया करें और एक रोटी का टुकड़ा डाल दें। इसलिए इन चार कोड़ियों ने विश्वास से अपना भाग्य अजमाया। ये एक दार्शनिक कहावत है, तुम्हारे पास खोने को कुछ ना हो तो सब लाभ ही है। मेरा मतलब, यदि वे हमें मारे तो हमारा क्या जाएगा, क्योंकि यहां भी हमें भूख से मरना ही होगा। परंतु अति संभव है कि वे हमें खाना डाल दें। इसलिए वे आराम की सेना के पंडाव की ओर चल पड़े। परमेश्वर ने चमत्कार किया। जिस समय ये चार कोड़ी आराम की सेना के पंडाव की ओर मार्ग पर थे, उस समय शाम के धुंधले में आरामियों ने रथों की, घोड़ों की और आदमियों की भीड़ की आवाज सुनी, और उन्होंने कहा, समरिया के राजा ने मिस्रियों को लेकर हमारे विरुद्ध चढ़ाई की है, यहां से निकलो। और उन्होंने भागना आरंभ किया। इन पुरुषों ने पूछा, तुम कहां जा रहे हो? मिस्री आ रहे हैं। और वे भागने लगे और आरामी खेमे में उपद्रव मच गया। सैनिकों ने भागकर यर्दन नदी की राह पकड़ी और पार करके आराम के गोलान में पहुंचे। इस तरह जब ये चार कौड़ी तंबू के पास पहुंचे तो वहां चारों ओर कोई नहीं था। अतः एक ने तंबू का पर्दा खोला और कहा, ओह देखो, मेज पर खाना लगा हुआ है। उन्होंने खाना आरंभ किया या खाने पर टूट पड़े। कुछ कीमती सामान तंबू में बिखरा पड़ा था, जिसे उन्होंने गड्ढा खोदकर दबाना आरंभ किया। एक दूसरे तंबू में भागा, दूसरे तंबू में आ जाओ। वो लोग दूसरे में भागे और सामान उठाने लगे और छिपाने लगे। एक जन अचानक रुक गया और कहा, एक मिनट रुको, हम गलत कर रहे हैं। यदि ये सब हमने यहां खा लिया तो हम पर संकट आएगा, क्योंकि समरिया में आज रात लोग भूख से मरने वाले हैं और यहां ये सब हम अपने तक सीमित रखें, छिपा रखें और उन्हें पता ना चलने दें तो संकट हम पर आएगा। अच्छा होगा वापस चलकर उन्हें बता दे कि यहां सबके लिए काफी भोजन है। इसलिए वे समरिया की दीवार के पास आए। वहां का द्वारपाल पीछे मुंह करके समरिया की ओर देखता हुआ भूख के कारण अपनी कमर पेटी कस रहा था। इन कौड़ियों ने उसे पुकार कर कहा, आरामियों का कैंप खाली पड़ा है और वहां सब लोगों के लिए बहुत भोजन है। पूरे शहर के लिए काफी खाना है। द्वारपाल ने दौड़कर राजा को यह समाचार दिया, मुझे अभी समाचार मिला है कि आरामियों का कैंप खाली है और वहां सभी के लिए काफी भोजन है। राजा ने कहा, यह एक फंदा है, किसी को बाहर मत जाने दो, दरवाजा बंद कर दो। वे आरामी बहुत चालाक लोग हैं, वे जानते हैं हम कितने भूखे हैं, इसलिए वे झाड़ियों में छिप गए और वहां बैठकर वे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब हम शहर के द्वार खोलें और बाढ़ की तरह बाहर निकलें। जैसे ही हम द्वार खोलेंगे वे पानी की तरह अंदर आकर हम सभी को मिटा डालेंगे, किसी को बाहर मत जाने दो। देखिए फिर से अविश्वास है। परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार सब कुछ दे दिया, परंतु अविश्वास ने उसका भागी होने से रोके रखा। एक ने कहा, राजा शहर में 5 घोड़े शेष हैं, जिन्हें खाया नहीं गया है, क्यों ना 5 मनुष्य बाहर जाकर पता करें कि कोई आरामी मिलता है कि नहीं। राजा ने कहा, जाओ। अतः ये 5 पुरुष बाकी 5 घोड़ों पर सवार होकर यर्दन नदी तक गए और भोर को वापस लौटकर उन्होंने कहा, यह सच है राजा, यर्दन नदी के इस पार एक भी आरामी नहीं है। यर्दन नदी के रास्ते भर चप्पल, वस्त्र और वे चीजें जो बाधा के कारण दौड़ते समय उन्होंने फेंक दी थी हमें मिली है, वे लोग जा चुके हैं। तब राजा ने अपने उसी सरदार से, जिसका वो सहारा लिया करता था, कहा, तुम जाकर नगर द्वार की पहरेदारी करो जब लोग अंदर बाहर आते जाते हैं। इसलिए वो जाकर पहरेदारी करने लगा और लोग उतावली से बेकाबू बाहर भागे जा रहे थे। भीड़ के इस प्रवाह में वो रौंदा गया और मर गया। इस तरह नबी का वचन पूरा हुआ, उसने देखा परंतु खा न सका। अविश्वास की दुख भरी कीमत।